नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।